ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने सौर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी है। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ये रैंकिंग आज नई दिल्ली में जारी की। उन्होंने कहा कि रैंकिंग और मान्यता शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद 58,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में से 6,500 संस्थान इस व्यवस्था में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में छात्र सुरक्षा का मुद्दा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जादवपुर में हाल ही में एक मामले के बाद यह घटना दोबारा हुई है। इस घटना के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस बीच दिल्ली के एम्स ने कहा है कि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। एक बयान में कहा गया है कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक ओपीडी सेवाएं काम करेंगी। केवल उन रोगियों को सुबह की ओपीडी में पंजीकृत किया जाएगा जिन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी आकस्मिक योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस और अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग चाहते हैं कि भारतीय बाजार ठह जाए, लेकिन देश का बाजार, कंपनियां और निवेशक मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर खड़े हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने नई दिल्ली में कहा कि रिपोर्ट के बावजूद आज शेयर बाजार में केवल 0.7% की गिरावट आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कल ईपीएफ ट्रांसफर विषय पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा। इस सत्र का उद्देश्य सदस्यों और पेंशनभोगियों को विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी देना है। इस लाइव सत्र को ईपीएफओ के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सत्र के दौरान ईपीएफ ट्रांसफर के महत्व, इसकी प्रक्रिया और प्रतिभागियों के सवालों का जवाब विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में पिछले लगभग 5 वर्ष के निचले स्तर 3.54% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और मसालों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर काठमांडू गए हैं। उन्होंने कल राष्ट्रपति रामचंद पौड़ेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देवा और सीपीएन के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से अलग अलग मुलाकात की। मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।